ಸ್ಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೀ ಜಯ. ಮೋರ ಮೂಟ ಬಂದು ಶಿವಾಲೇ ಕೀ ಜಯ. ಆಪನೆ ಯೇ ಬಾತ್ ಪೂಛಿ ಇಸ್ ಕಲಯುಗ ಕೆ ಬೀಚ ಕೆ ವಹಾಂ ಜೊ ಹೈ ಅಪನೆ ಗೃಷ್ಟಿಯೋ ಕಾ ಕೈಸೆ ಉದ್ಧಾರ ಹುಏ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆ ಮಾ ತೊ ಬಹುತ್ ಭಾರಿ ಛೂಟ್ ದಿ ಹೈ. ಮಹಾಭಾರತ ಮೇ ಪುರಾಣ ಮೇ ರಾಮಾಯಣ ಮೇ ಜಿಥೆ ಬಾತ್ ಆವೆ ಹೈ ಕಲಯುಗ ಕಿ ಜಿಥೆ ಬಹುತ್ ಛೂಟ್ ದಿ ಹೈ ಔರ್ ಸಮಝೋ ಕಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಕವೇ ಕಲಯುಗ ಸಮಯುಗ ಆನ ನಹೀ ಜೋ ನರ ಕರೆ ವಿಸೇವಾಸ್. ಗುಣ ಗಣ ವಿಮಲ ಭವತರ ಬಿನಹಿ ಪ್ರಯಾಸ. ಕವೇಗೆ ಕಲಯುಗ ಕೆ ಸಮಾನ ಕೋಯಿ ಯುಗ ನಹಿ ಹೈ ಜಿಸ ಕೋಯಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕರೆ ರಾಮ ಕಾ ಗುಣ ಗಾಣೆ ಸೇ ಕೈಸಾ ಜೊ ಗುಣ ಹೈ ಕಿ ಮಲ ರಹಿ ವಿಮಲ ವಿಶುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜೊ ಗುಣ ಹೈ ಜಿಗಾ ಗಾಯನ ಕರನೆ ಸೇ ಬಹು ಜೊ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಹೈ ಇಸ್ಕೋ ಮನುಷ್ಯ ತರ ಜಾತ ಬಿನಾ ಕೋಯಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಿನಾ ಆಯಾಸ ಕೆ. ಕಲಯುಗ ಕೇವಲ ನಾಮ ಆಧಾರ ಆಧಾರ ಹೈ. ಇಸ್ಕೋ ಸುಮರಣ ಕರ್ಕೆ ಸುಮರಣ ಕರ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಪಾರ ಹೋನಾ ಚಾಹಿ. ಕಲೌ ನಾಸ್ತಿ 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 ಗತಿ ಅನ್ಯತಾ ಜನ ಕೇ ಕಲಯುಗ ಮಾ ದೂಸರಿ ಗತಿ ನೀ ಹೈ ದೂಸರಿ ಗತಿ ನೀ ಹೈ ದೂಸರಿ ಗತಿ ನೀ ಹೈ. ಹರೇರ್ ನಾಮ ಹರೇರ್ ನಾಮ ಹರೇರ್ ನಾಮ ಕೇವಲಂ ನಾಸ್ತಿ 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 ಗತಿ ಅನ್ನದ ಹರೇರ್ ನಾಮ ಹರೇರ್ ನಾಮ ಹರೇರ್ ನಾಮ ಕೇವಲ ಮತಲಬ್ ಕಲಯುಗ ಬೀಚ ಕೇ ಮಾತೋ ಕೇವಲ ಹರಿ ಕೋಯಿ ನಾಮ ಹೈ ಹರಿ ಕೋಯಿ ನಾಮ ಹೈ ಹರಿ ಕೋಯಿ ನಾಮ ಹೈ ಸಮಝಾ ತೋ ಮನೆ ಹರಿ ಕೋ ಜೊ ನಾಮ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ನಾಮ ಕೋ ಜೊ ಜಪ ಹೈ ಜಿ ಕೋಯಿ ಕಲಯುಗ ಕೆ ಮಾ ಪ್ರಧಾನ ಹೈ. ಕೇ ನಾಸ್ತಿ ಎ ಗತಿ ಅನ್ಯತಾ ಮನೆ ದೂಸರಿ ಅನ್ಯತಾ ಜೊ ಗತಿ ಹೈ ಸೋ ಹೈ ನೀ ಹೈ ನೀ ಹೈ ತೀನ್ ಬಾರ ಜೊ ಹೈ ಹರಿ ಕೋ ನಾಮ ಲೇಕರ್ ಆವೃತ್ತಿ ಕರ್ಕೆ ಯಾ ಬಾತ್ ಸಿದ್ಧ ಕರಿ ಕಿ ಕಲಯುಗ ಮಾತೋ ಕೇವಲ ಹರಿ ಕೋ ನಾಮ ಹೀ ಸೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರನೆ ವಾಲೋ ಹೈ ಅರ್ ತೀನ್ ಬಾರ ನಾಸ್ತಿ ಅಗರ್ ಯಾ ಬಾತ್ ಕಹಿ ಕಿ ದೂಸರಿ ಕೋಯಿ ಗತಿ ಹೈ ನೀ ಹೈ ನೀ ಹೈ ತೋ ಕಲಯುಗ ಬಹುತ ಸುಗಮ ಸೋಬತರಾಯ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಕೆ ಛತ್ತೆ ಅಂಶ ಕಿ ದೂಸರಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆ ವಹಾಂ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಜಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಮೇ ಬಹುತ ಸೇ ಋಷಿ ಲೋಗ ಆಯ ತೋ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಜಿ ಸ್ನಾನ ಕರ್ಕೆ ಜಲಾಶಯ ಸೇ ಬಾಹರ ನಿಕಲ್ ಕರ್ಕೆ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಯ ತೋ ಸಬ್ ऋषियों से पूछा कि आप कैसे आए, बोले हम जिस काम के लिए आए हैं वो बात तो बाद में पूछेंगे, किंतु पहली बात आप हमको ये बतलाओ, आप जब स्नान करते थे जल में डुबकी लगाते थे तो कहते थे कि अपने कलयुग को धन्य है, कलयुग को धन्य है, तो मैं को क्या मतलब है, यह बात आप पहला समझाओ। कलयुग ने आप धन क्या मतलब था, तो उन्हें उत्तर दियो और युगों के बीच के वहां सतयुग त्रेता युग द्वापर आदि जो युग है उनके बीच के वहां जो है यज्ञ दान तप स्वाध्याय और जितना जो उत्तम व्रत है जीवों के पालन करने से मनुष्य को कल्याण हुआ, जिसको कलयुग के वहां केवल हरि के नाम से उद्धार हो जाओ भगवान की भक्ति से। तो इस वास्ते में यह बात कही कि कलयुग को सो धन्य है, कलयुग को धन्य। दूसरी बात यह कही कि सतयुग के बीच के मां 10 वर्ष साधन करने से और त्रेता युग के बीच के मां 1 वर्ष साधन, 1 साल साधन करने से, द्वापर युग में 1 महीने साधन करने से जो कार्य की सिद्धि है जिसकी कलयुग के मां 1 दिन में, तो इस वास्ते में केवल कलयुग है सो धन्य है, कलयुग है सो धन्य। तीसरी बात यह कही कि सतयुग के बीच के मां तो ध्यान करने से अपने कल्याण होया करते, और त्रेता युग के बीच के मां जग करने से और द्वापर युग के बीच के मां पूजा करने से और कलयुग में केवल जी के नाम कीर्तन से ही तो कल्याण हो जावे। तो ये 3 श्लोक अगर 3 उदाहरण देकर के बात बताई कि ही कलयुग के बीच के मां बहुत ही सुगमता है, इसलिए कलयुग को मैंने धन्यवाद दिया। तो कलयुग को तो यो जवाब मैं जीवा अपने के भी कलयुग के वहां क्या उद्धार हुए। दूसरी बात आई कि गृहस्थाश्रम, तो गृहस्थाश्रम में पुरुष भी है स्त्रियां भी है, तो वहां ही उसी अध्याय के बीच के मां उन्होंने साथ में यह बात कही कि स्त्रियां धन्य है, स्त्रियां धन्य है, स्त्रियां धन्य, स्त्रियां सुश्रेष्ठ है। तो बोले किया बात क्या थी, बोले इसलिए कही कि पुरुषों के कल्याण के बीच के मां बड़ी कठिनता है, पुरुष है तो समझो कि आपने जप करे तप करे और यज्ञ दान सेवा आदि बहुत से जो कर्म बताए उसके करने से जो परमार्थ की सिद्धि हुए, वह परमार्थ की सिद्धि अस्त्रियों के लिए केवल पातिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म के धारण करने से उद्धार। तो इस वास्ते में जो भी स्वागिनी स्त्री है तो धन्य, जगह पति है बहुत धन्य, जब पति मौजूद है तो मैं को उद्धार बहुत शीघ्र हो जाए। तो अस्त्रियों के वास्ते यह सुगमता बतलाई, गृहस्थाश्रम के मास्त्रियां भी है पुरुष भी है, फिर अस्त्रियों के वास्ते करके उसी जय के बीच के वहां वेद व्यास जी बोले शूद्र सुधन्य शूद्र सुधन्य शूद्र सु, तो बोले इनको क्या मतलब हो, शूद्र ने धन्यवाद दियो, बोले इस बात के वास्ते धन्यवाद दियो कि ब्राह्म क्षत्रिय वैश्य जो है संध्या उपासना गायत्री जप होम स्वाध्याय आदि करने से जो बनाने लाभ प्राप्त हुए, कलयुग ने केवल सब वर्णों की सेवा करने से वही लाभ हो जाए। इस वास्तव में कभी भी बने सो धन्य बिना परिश्रम काम सिद्ध हो जाए, तो परमात्मा की उन्हें पर विशेष दया, इसलिए मैं होगा। जब शुद्रा को उद्धार हो जाए सरजू के बीच के वहां, तो फिर ब्राह्म क्षत्रि वैश्य को उद्धार हो जाए दिक्कत, फिर कर्ण ही क्या है। तो यह बात आपको बताई कि जमाने के बीच के वहां बहुत ही शीघ्र उद्धार हो सके है। और ईश्वर की भक्ति सभी वर्ण आश्रम में और सभी जुगा कमा सभी देश काल में मनुष्य कर सकता है। जिसको महात्म जो है महत्व है सो सभी शास्त्र के मालिके रो है। यह बात सोच करके अपन इस जमाने के बीच के माँ भगवान की भक्ति को बहुत तेजी के साथ में प्रचार करना चाहिए। ऐसे मौको बार बार मिलना अपने मुश्किल है। ईश्वर की बड़ी भारी अपने ऊपर कृपा हुई है, जिसको इस देश काल और इस धर्म के में अपनो जन्म हो। भारत वर्ष से बढ़कर कोई देश नहीं है आत्मा के कल्याण के लिए। और कलयुग के समान कोई काल नहीं है, असत्पुरुषों के संघ के समान कोई संघ नहीं है। सतपुर संघ और सत्शास्त्र को जो संघ है, और शास्त्र के बीच के मां सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो जिस युग के मां शूद्र को भी उद्धार सहज में है, वहां फिर ब्राह्म क्षत्रि वैश्य को उद्धार हो जाए तो कर्ण क्या है। और कलयुग के बीच के मां फिर भगवान की शरण को जो मार्ग है, जिसको बहुत ही सरल है, उसके लिए यह बात कही है शास्त्र के वास्ते। मां ही पार्थ विवास्त ये पी सू पाप यो ने अस्त्री वैश्या तथा शूद्रा से भी अंति परां गति। हे पार्थ मेरी शरण होगा, स्त्री होते वही सोचे शूद्र हो और चाहे चंदाजियों ने भी क्यों नहीं हो, भगवान का कहना है कि मेरी शरण लेकर के वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये गीता की 9:32 के श्लोक में भगवान ने कही। फिर कहते किन पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता राज सदा। फिर जो पुण्यात्मा जो ब्राह्मण है राज जो क्षत्रिय है, मेरी शरण आने पर उनका जो उद्धार हो जाए, उनको जो परम गति की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। तो इससे यह बात सिद्ध हुई कलयुग के बीच के मां सबसे बढ़कर के ईश्वर की शरण ईश्वर की भक्ति है। और वो भक्ति मौजूद है तो उत्तम देश उत्तम काल उत्तम जाति उत्तम संघ उत्तम धर्म ये सब बातें उतनी उत्तम मिलकर के अपन यदि वंचित रहा भगवान की प्राप्ति से तो आपने समाज फिर मूर्ख कौन है। यह बात एक प्रकार से हर एक माता बहनों को भाइयों को समझनी चाहिए। और ये सब होकर के भी यदि अपने आत्मा को उधार नहीं हो तो अपने लिए बहुत ही एक समझो कि दुख की बात है, निंदा की बात है। जो न तारे भव सागर नर समाज ऐसे पार। शोकृत निंदक मंदमती आत्म मन गति जाय सिया। जो न तरे भव सागर नर समाज से पाए। जो नर है जो मनुष्य इस प्रकार के समाज को पाकर के इस प्रकार की सामग्री को पाकर के और जो भवसागर के पार नहीं तरता है तो वो मंद मति मूर्ख है और निंदा का पात्र है और आत्मा की हत्या करने वाले आत्महत्या की जो दुर्गति वस्तुई दुर्गति उसकी होगी। तो आत्मा की हत्या करने वाले की क्या दुर्गति हो है? यजुर्वेद माने जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी 40वीं अध्याय के 30वें मंत्र में यह बात कही है, असूर्य नाम ते लोका अंधे न तमसा विता तांस्तेन प्रत्याभिगच्छन्ति ये केते आत्मनो जना। असूर्य नाम ते लोका अंधे न तमसा विता, जिसके मन ज्ञान नहीं है ऐसा जो असूर्य नाम वाले जो लोक हैं, जिससे शुक्र कुकर आदि जो त्रिकोणिया पशु पक्षी कीट पतंग आदि ये जो त्रिकोणिया है और घोर जो नरक है और जहां घोर अंधकार है, ऐश्वर्य नाम वाली योनियों के भीतर में तो ज्ञान नहीं है और नरकों के बीच के वहां घोर अंधकार है। वे मरकर के जो आत्मत्यारे जो पुरुष है वे मरकर के उन लोगों को जाते हैं। कैसे जो लोग कहते हैं कि वहां अंधेरों भी है और ज्ञान भी नहीं, तो उत्तम देश उत्तम काल उत्तम जाति उत्तम धर्म और उत्तम संघ और उत्तम शास्त्र ये सब चीज की तजवीज लगने पर भी संसार के बीच के वहां फिर अपने लोगों को जन्म हुए तो अपने लिए बहुत शर्म की बात है, लज्जा की बात है, दुख की बात है, शोक की बात है। जो मनुष्य को शरीर अपने लोगों ने मिले है तो इससे लाभ उठाना चाहिए और इसने व्यर्थ है तो नहीं गंवाना चाहिए। ईश्वर ने जो कि विवेक बुद्धि ज्ञान ये सब चीज अपने लोगों को दी है तो उससे अपने लाभ उठाना चाहिए, अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा यह समझना चाहिए कि प्रथम तो शरीर का भरोसा नहीं है कि नहीं मालूम ये कब शांत हो जाए, ये तो शांत होया ही पड़ा है। जो हम जीते हैं ये आश्चर्य की बात है, भीतर के मन जो सोना आता है आया नहीं आया इतनी बार का तो काम है, और जिस से एक द्वार हुए उसमें भी वो हवा ठहरनी मुश्किल है, जिसके नौ द्वार है ऐसा जो शरीर है इसमें हवा प्राण जो वायु कैसे टिकी हुई है भगवान ही जाने। तो यही आश्चर्य की बात है, मरना कोई आश्चर्य नहीं है। जब मृत्यु आगे प्राप्त हो तो खबर नहीं दे कि अमुक समय में आऊं, तो पहले से ही हम लोगों का अपना सावधान होकर के और अपना काम बना लेना चाहिए। जी को आंखों में पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावे ही सिर धोने धोने पचिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, जो ऐसे मनुष्य के शरीर को पाकर करके और भवसागर से नहीं तरता है वह मूर्ख आगे जाकर के काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगा देगा। भी समय कलयुग का खराब आ गया, इसलिए मेरी सदगति नहीं हुई, मैं साधन नहीं करने पाया। मेरे तकदीर के मां भगवान ने ये बात लिख दी, भगवान की यही मर्जी थी, इस कारण से मेरा उद्धार नहीं है। इस प्रकार का झूठा दोष उनके ऊपर लगा ले, तो जिस बातों को सोच करके कि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम को शीघ्र सिद्ध कर लेना चाहिए। ये संसार के जितने जो पदार्थ स्त्री पुत्र धन रुपया मकान इत्यादि जो है, ये कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी, अपना शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं है, तो फिर किस लिए हम नाना प्रकार का अन्याय कर करके के और अपने धन को बटोर रहे हैं। ये अपना जो कुटुंब है, शरीर पास होने के बाद इससे कोई संबंध नहीं रहेगा, जैसे पूर्व जन्म के माँ भी हमारे कुटुंब के सब लोग थे, हम जानते ही नहीं कि कौन फिर कौन नहीं। इसी प्रकार से यहाँ से विदा होने के बाद यहाँ के किसी को भी हम नहीं जानेंगे, तो फिर कुटुंब के लिए हम पाप क्यों करें? अरे अपने शरीर के लिए, कि शरीर के बाद यदि खूब खाओ पहरे तो 10 पेर मांस अधिक हो जाए तो क्या, कम हो जाए तो क्या, आखिर में तो मिट्टी में मिलना है, खाक में खाक होनी है। या तो मनुष्य मरता है तो घरवाले जला करके खाक कर देते हैं, या समझो जानवर भक्षण कर जाते हैं तो अपने वे मैला कर देते हैं, तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, या समझो कि जल के मां कहीं फेंक दिया हमारे को तो जल के जानवर खा जाते हैं। दशा तो समझो कि यही तो होगी ना, और क्या दशा होगी? इस संसार के मां तीन ही चीज एक प्रकार से है, जल और समझो कि अग्नि और भूमि। या तो जो मनुष्य मर जाता है उसको भूमि में गाड़ देते हैं, या तो अग्नि में प्रवेश करा देते हैं, जल में प्रवेश करा देते हैं, तीन ही तो मार्ग है, तीनों का नतीजा आंखों में मिट्टी होनी है। तो शरीर तो मिट्टी की चीज और मिट्टी में मिलने वाली है, तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां शरीर के लिए भी मोह करके अपने जीवन को हम क्यों नष्ट करें? इन सब बातों को विचार करके हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को अपने शीघ्र करना चाहिए। अपनी आत्मा के उद्धार करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, उस बात को हम भूल करके समझो कि जैसे कोई मदरा पी करके अनुमंत हो जा रहा है, ऐसे हम मोह रूपी माया का पान करके और अनुमंत की माफक हो रहे हैं। तो हमको थोड़ा विचार करना चाहिए, आगे पीछे का विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए आए, किस काम में हमारा समय बीत रहा है। ये जो अमूल जो मनुष्य का जीवन है, इस प्रकार से बिताने की चीज नहीं है। श्रुति स्मृति सब कहते हैं कि तुम सावधान हो, सेत हो, जिस काम के लिए आए उसको संभालो। दुनिया में जितने जरूरी काम है तुम नहीं करोगे तो जो तुम्हारे उत्तराधिकारी होंगे ये कर लेंगे, किंतु तुम्हारी आत्मा का जो उद्धार करना है, तुम्हारी आत्मा का जो कल्याण करना है, वो तो तुमको ही करना होगा। अगर बाकी रह जाएगा तो एक प्रकार से कोई भी तुम्हारा उत्तराधिकारी इसको पूर्ण नहीं करेगा, उनके भरोसे रहना बिल्कुल मूर्खता है। जो तुम्हारे उत्तराधिकारी अपना कल्याण कर ले तो भी तो बहुत है, उनके भरोसे के ऊपर तुम इस असली काम को छोड़ करके जा रहे हो। अब तो तुम्हारे को सचेत होना चाहिए, वो तुम्हारा पुत्र है कि जो तुम्हारी आत्मा के कल्याण में मदद करे, नहीं तो वो पुत्र क्या है, मूत्र है। और वो तुम्हारी नारी है जो तुम्हारे को इस काम के बीच के वहां मदद करे, नहीं तो वह नारी क्या, गुमारी है। और वो तुम्हारा सच्चा धन है, तुम्हारी असली संपत्ति है,
जो तुम्हारी मुक्ति में सहायक है, नहीं तो संपत्ति नहीं विपत्ति है। जब मनुष्य मरता है तो इसका मन इन्हें संपत्ति में अटकता है। तो ये सब बातों को विचार करके के और त्रिलोकी के एकरज को ठुकरा करके के उस काम के लिए कोशिश करनी चाहिए जिस काम के लिए तुम आए हो, वही तुम्हारा एक नंबर काम है। इस प्रकार से थी महात्माओं ने जगह जगह अपने चेतावनी दी है, शास्त्रों ने सो इस प्रकार से फटकारा है, चिताया है। फिर भी एक प्रकार से हमारी दृष्टि नहीं खुले, हमारे को ज्ञान नहीं हुए, तो इस सबको क्या मूर्खता होनी है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्यार रामचंद्र की जय, मारमूट बंसी वाले की जय। तो आपका जो सवाल था उसका ये उत्तर हो गया संक्षेप से कि इसे कलयुग के बीच के वहां गृहस्थाश्रम के बीच के वहां चाहे कोई भी क्यों नहीं वस्त्री होते, समझो कि पुरुष हो और शुद्ध हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, ईश्वर की भक्ति से ईश्वर की शरणागति से अपने कल्याण हो सकता है शीघ्र ही। इसलिए हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए और ईश्वर के लिए कर्म करने से भी, अपने अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर को पूजने से भी मुक्ति हो सकती है। ईश्वर की शरण से जो पापी से पापी की जो मुक्ति हो सकती है, ये बात तो गीता की दो ही जाके 32 श्लोक में कही। और अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान को पूजने से परम गति मिल जाती है, यह गीता की 18 जाके 46 श्लोक में कही। गीता की 18 जाके 42 श्लोक में ब्राह्मण के जो आपने स्वाभाविक धर्म उनकी व्याख्या की, और 43 के श्लोक में क्षत्रिय उनके अपने धर्म की, और 44 के श्लोक के बीच में जो वैश्य और ब्राह्मण का कर्तव्य बताया, और 45 के श्लोक में यह बात कही कि स्वस्थ कर्मण्य अभिगत संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने धर्म के मां रत हुआ पुरुष संसिद्धि परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। वो भगवान कहते कि मैं आगे के श्लोक में कहूंगा, ये कहते कि फिर ये श्लोक बताया कि यत प्रवृत्ति भूतानांगे न सर्मिदं कदम स्वकर्मणातं व्यय से सिद्धि विन्दति मानवे।